आगे सबक देखिए भाई, व इदा दखल अल हर्बी युदारना बि अमानि वश्तरा अब्दम मुस्लिम व अदखलहु दार अल हर्बी अतक इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह वकाला रहिमहुमल्लाह तआला ला यातिकु लिअन्न अल इजालत कानत मुस्तहक्कतन बितरीकिन मुअय्यनिन व हुवल बैउ व कद इन्क़तअत विलायतुल जबरि अलैहि फबक़िय फी यदिहि अब्दा। भाई गुज़श्ता सबक में बाबु इस्तीला इल कुफार हम पढ़ रहे थे कि कुफार किसी जगह पर गलबा हासिल कर लें तो फिर क्या हुक्म होगा। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर एक मुल्क के कुफार दूसरे मुल्क के कुफार पर गलबा हासिल कर लें और फिर उनको कैदी बना लें और उनके अमवाल को ले लें तो वो उसके मालिक बन जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर हम उन कुफार पर गालिब आ गए तो हमारे लिए हलाल होगा उनके पास जो माल भी है, जो उन्होंने दूसरे कुफार से छीना था वो भी हमारे लिए हलाल होगा और खुद इन कुफार का माल भी हमारे लिए हलाल होगा। भाई उसके बाद आपने मसला पढ़ा कि अगर कुफार हमारे मालों पर गालिब आ गए और उनको अपने दार में ले गए तो उसके मालिक बन जाएंगे, जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो इसके मालिक नहीं बनेंगे, इसलिए क्योंकि उनका ये गलबा ममनू है, हराम है, इब्तिदा के एतबार से भी और इंतहा के एतबार से भी। इब्तिदा के एतबार से यानी दारुल इस्लाम में जब उन्होंने हमारे माल पर कब्जा किया, और इंतहा के एतबार से भी ये कब्जा हराम है जब उसको दारुल हर्ब में ले गए। और जो चीज हराम और ममनू हो वो मिल्कियत का सबब नहीं बन सकती, इसलिए क्योंकि मिल्कियत तो अल्लाह की तरफ से नेमत है और इनाम है, और वो चीज जो मनही अनहु हो, जो हराम हो, वो नेमत का सबब नहीं बन सकती। जैसे जीना हराम है तो ये मुसाहरत का सबब नहीं बन सकता, और जैसे सफर के अंदर रुखसत होती है लेकिन अगर गुनाह का सफर है यानी डाके या चोरी की नीयत से कोई सफर कर रहा है तो उसको ये रुखसत हासिल नहीं होगी भाई। और नीज ये उनका फेल हराम है क्योंकि बिल इत्तेफाक कुफार जो हैं वो इबादतों के मुकल्लफ तो नहीं लेकिन हुरुमात के मुकल्लफ हैं, जिन चीजों से मुसलमानों को रोका गया है उनसे कुफार को भी रोका गया है, तो कुफार का मुसलमानों के माल पर ये इस्तीला इब्तिदाअन भी हराम और इंतहाअन भी हराम, लिहाजा वो मालिक नहीं बनेंगे। जबकि हमारे नजदीक अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लिल फुकारा इल मुहाजिरीन, अल्लाह ने उन हिजरत करने वालों को फुकारा करार दिया, वो मुसलमान जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे उनको कुरान में फुकारा कहा गया, हालांकि उनमें बास बड़े मालदार थे, उनकी जायदादें थीं और माल भी पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन मालूम हुआ वो माल उनकी मिल्कियत से निकल गया था, इसीलिए कुरान में उनको फुकारा कहा गया। अगर वो माल अब भी उनकी मिल्कियत में बाकी होता तो उनको फुकारा नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ गई। और नीज इसी तरह फिर साहिब हिदाया ने दलील जिक्र की कि कुफार ने ये जो मुसलमानों के माल पर कब्जा किया है ये माले मुबाह पर कब्जा किया है, और माले मुबाह पर जो भी कब्जा कर ले वो उसका मालिक बन जाता है, जैसे शिकार है या जंगल की लकड़ियां हैं या जंगल की घास है, जो भी इनको इकट्ठा कर ले और जमा कर ले वो उसका मालिक बन जाता है। तो ये जो माल मुसलमानों का वो लूट कर ले गए हैं ये भी उनके लिए माले मुबाह हैं भाई। तो जब ये माले मुबाह है तो ये मिल्कियत का सबब बनेगा मुकल्लफ की हाजत दूर करने के लिए। मैंने आपको बतलाया था भाई कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं खलक लकुम मा फिल अर्ज जमीआ, कि जमीन की तमाम चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। तो ये आयत तकाजा कर रही है कि हर माल मुबाह होना चाहिए, लेकिन मुकल्लफ इस माल से तभी फायदा उठा सकता है जब मुकल्लफ को इसका मालिक करार दिया जाए, क्योंकि मुकल्लफ को हाजत है, वो इस माल से फायदा उठाना चाहता है, और फायदा तभी उठा सकता है जब उसे इस माल का मालिक करार दिया जाए, इस माल को माल मासूम और महफूज करार दिया जाए। तो लिहाजा इस मुकल्लफ की जरूरत और हाजत की वजह से उसके लिए माल की इस्मत साबित हो जाएगी, ये माल उसके लिए महफूज हो जाएगा। वरना अगर माल की इस्मत उसके लिए साबित नहीं होगी वो तो माल से फायदा ही नहीं उठा सकता। मसलन कोई आदमी जंगल से लकड़ियां ले आया और अगर ये कहा जाए कि ये लकड़ियां अभी भी मुबाह हैं, फिर तो किसी और शख्स का भी इसे ये लकड़ियां ले जाना और इस्तेमाल करना जायज हो जाएगा। तो ये जो शख्स जंगल से लकड़ियां लाया था ये तो इन लकड़ियों से फायदा नहीं उठा सकेगा। या इसी तरह कोई शिकार पकड़कर ले आता है, अगर अब भी ये कहा जाए कि ये शिकार का मालिक नहीं है तो फिर तो किसी और के लिए भी ये शिकार ले जाना इससे जायज हो जाएगा। तो यह शख्स तो इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। तो मुकल्लफ यानी इंसान जो है वह चीजों से फायदा उठाने का मोहताज है, लिहाजा जरूरी है कि उसको इस माल का मालिक करार दिया जाए। तो लिहाजा मुकल्लफ के लिए माल मुबाह की मिल्कियत साबित हो जाएगी इस आयत के मुनाफी होकर, क्योंकि इस आयत से तो पता चल रहा है हर माल मुबाह है, लेकिन जरूरत और हाजत की वजह से आप जानते हैं अजरूरत तुबीहुल महजूरात, जरूरत की वजह से तो हराम चीज को भी हलाल करार दे दिया जाता है। तो लिहाजा यहां पर भी इस शख्स को जरूरत और हाजत है इन चीजों से फायदा उठाने की, लिहाजा उसको इस माल का मालिक करार दिया जाएगा। तो इस आयत के मुनाफी होकर उसके लिए मिल्कियत का हुक्म साबित हो जाएगा। तो मालिक का माल से फायदा उठाने की कुदरत के लिए जरूरी है कि मालिक माल से फायदा उठाने पर कादिर हो, इसके लिए जरूरी है कि मालिक के लिए उस माल की इस्मत साबित की जाए कि यह माल महफूज है और यह शख्स इसका मालिक बन चुका है भाई। लेकिन जब कुफार उस माल को छीन कर दारुल हर्ब में ले गए तो अब मालिक के लिए कुदरत न रही उस माल से फायदा उठाने की। तवज्जो है, इस माल को हमने मासूम करार दिया था, किस लिए मासूम करार दिया था? ताकि मालिक को कुदरत हासिल हो जाए इससे फायदा उठाने की। और जब वो दारुल हर्ब में ले गए तो मालिक को उस माल से फायदा उठाने की कुदरत न रही। जब मालिक को कुदरत न रही तो अब वो माल फिर माले मुबाह बन जाएगा। कुदरत की जरूरत की वजह से ही तो माल को मासूम और महफूज करार दिया गया था। अब जब मालिक की कुदरत ही ना रही तो वो माल फिर माले मुबाह बन गया और कुफार का माले मुबाह पर कब्जा हुआ तो वो उसके मालिक बन जाएंगे भाई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया था कि जो चीज ममनू हो वो मिल्कियत का सबब नहीं बन सकती। तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि ममनू चीज दो किस्म पर है, एक ममनू लिआइनी ही है और एक ममनू लि गैरी ही है। ममनू लिआइनी ही जिसको अपनी जात की वजह से ही ममनू और हराम करार दिया गया है, और ममनू लिगैरी ही वो चीज जिसको अपनी जात की वजह से ममनू या हराम करार नहीं दिया गया बल्कि दूसरी चीज की वजह से इसको ममनू और हराम करार दिया गया है। और ममनू लिगैरी ही जो है वो गैर की वजह से तो ममनू है लेकिन अपनी जात के एतबार से ममनू नहीं है, लिहाजा वो मिल्कियत का सबब बन सकती है। जैसे अर्ज मकसूबा के अंदर नमाज, कोई शख्स किसी की जमीन गसब कर लेता है, छीन लेता है, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, अब इस अर्ज मकसूबा के अंदर वो नमाज अदा करता है। अगरचे इस अर्ज मकसूबा के अंदर ये नमाज जो है पसंदीदा नहीं, ये अल्लाह की रजा का बाइस नहीं है, लेकिन बहरहाल फुकहा फरमाते हैं इस नमाज की वजह से उसका फर्ज अदा हो जाएगा, उसके जिम्मे से वो नमाज साकित हो जाएगी। और फर्ज का अदा होना ये भी तो एक नौ का सवाब है। मालूम हुआ ये नमाज जो अर्ज मकसूबा में अदा की गई ये ममनू अली गैरी ही थी, लेकिन ममनू अली गैरी ही होने के बावजूद ये सवाब का सबब बन रही है। जब ये सवाब का सबब बन रही है जो उखरवी चीज है तो दुनियावी मिल्कियत जो उसे दना दर्जे की है उसके लिए तो यह बतरीके औला सबब बनेगी भाई। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर मुसलमान दारुल हर्ब पर फिर कब्जा कर लें और फिर वही माल वापस गनीमत के अंदर दारुल इस्लाम आ जाए तो मालिक जो है वो तकसीम से पहले उस माल को लेना चाहे तो वैसे ही मुफ्त में ले लेगा, लेकिन अगर तकसीम के बाद वो इस माल को लेना चाहता है तो फिर वो गाजी जिसके हिस्से में ये माल आया था उसको उस माल की कीमत अदा करेगा और फिर ये चीज उससे ले लेगा भाई। इसी तरह अगर कोई ताजिर वो चीज कुफार से खरीद कर ले आया تو بھی مالک کو اختیار ہے، وہ اس کو لینا چاہتا ہے تو وہ سمن جو تاجر نے ادا کیے تھے وہی ادا کرے اس تاجر کو اور یہ مال اس سے لے لے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو یہ مال کفار نے تحفے کے طور پر دے دیا تو بھی اصل مالک کو اختیار ہے، وہ اس موہوب لہو کو، یعنی یہ شخص جس کو یہ تحفہ دیا گیا تھا، اس کو اس کی قیمت ادا کر کے یہ مال اس سے لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ مال جو کفار نے چھینا تھا وہ مثلیات میں سے تھا تو اس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر تقسیم سے پہلے مالک کو اس مال کا پتہ چلا تو وہ اس کو مفت لے لے گا، لیکن تقسیم کے بعد وہ اس مال کو نہیں لے سکتا، اس لیے کیونکہ اسی جیسی چیز دے کر اس مال کو لینے میں کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا کفار اس کا 10 مثقال عمدہ قسم کا سونا لے گئے تھے، تو اب اس کو اسی قسم کا مال دے کر یہ اپنا مال چھڑانا ہوگا، تو اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنا عمدہ قسم کا 10 مثقال سونا چھڑانے کے لیے اس کو بھی عمدہ قسم کا 10 مثقال ہی سونا دینا پڑے، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر تاجر جو ہے کسی اور چیز کے بدلے اس مال کو لے کر آیا ہے تو پھر وہ دوسرا مال تاجر کو دے کر یہ اس سے وہ اپنی مثلی چیز لے سکتا ہے بھائی۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کفار مسلمانوں کے کسی غلام کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو قید کر لیا اور پھر اس کو کوئی آدمی وہاں سے خرید کر لے آیا اور اس آدمی کے پاس اس غلام کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی اور اس مشتری نے اس مجرم سے اس آنکھ کا عرش وصول کر لیا، یعنی غلام کی نصف قیمت اس سے وصول کر لی، اور اس کے بعد آقا کو اپنے اس غلام کا پتا چلا جبکہ اس غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے، تو بھی پرانا آقا اگر اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو پورے سمن ادا کرنے پڑیں گے بھائی، اس لیے کیونکہ آنکھ جو ہے وصف کے درجے میں ہے اور ملک صحیح کے اندر اوصاف کے مقابلے میں سمن یا مال نہیں ہوتا، تو لہذا یہ جو آنکھ ضائع ہوئی ہے اس کی وجہ سے سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ملک صحیح کے اندر اوصاف کے مقابلے میں سمن یا مال نہیں ہوتا، جبکہ ملک فاسد کے اندر اوصاف کے مقابلے میں مال یا سمن ہوتے ہیں، جیسے بیع فاسد ہے۔ بیع فاسد مثلا بائع اور مشتری جو ہیں وہ بیع کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی شرط لگا دیتے ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہے، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ایجاب اور قبول کرنے کے باوجود مشتری جو ہے مال کا مالک نہیں بنے گا۔ ہاں مشتری اگر بیع فاسد کے اندر بائع کی رضامندی سے اس مبیع پر قبضہ کر لے گا پھر مالک بنے گا، لیکن یہاں پر بھی اس ملکیت کے اندر خرابی آ گئی، وجہ یہ کہ شریعت نے اس طرح کی بیع سے منع کیا تھا، تو لہذا دونوں پر اس بیع کو توڑنا اور مبیع کو واپس کرنا ضروری ہے بھائی۔ تو لہذا معلوم ہوا بیع فاسد کے اندر جو ملکیت آتی ہے اس کے اندر فساد ہے، خرابی ہے، لہذا وہاں اوصاف کے مقابلے میں سمن آئیں گے۔ لہذا اگر مشتری کے پاس اس مبیع کے اندر اس کے وصف میں کوئی کمی آ گئی تو اس صورت کے اندر اس مشتری پر بھی زمان آئے گا بھائی، اور جتنا نقصان آیا ہے اس وصف کی وجہ سے مبیع کے اندر اتنا ہی زمان اس مشتری پر آ جائے گا۔ اور اسی طرح شفا بھی ہے بھائی، شفا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شفا اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زمین کو بیچے تو اس کے پڑوسی کو اللہ نے حق دیا ہے، وہ شفا کر کے زمین کو نئے مالک سے جبرن لے سکتا ہے بھائی، اس کو شفا کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی نئے خریدار کو چونکہ وہ زمین اس شفیع کو دینا پڑے گی تو اس کی مشابہت آ گئی شرائع فاسد کے ساتھ، جیسے شرائع فاسد کے اندر مبیع کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح شفے کے اندر بھی زمین کو شفیع کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بے فاسد کے اندر تو اوصاف کے مقابلے میں سمن ہوتے ہیں، لہذا شفے کے اندر بھی زمین کے وصف میں کوئی کمی آئی ہے تو اوصاف کے مقابلے میں سمن ہوں گے اور اسی کے مطابق سمن کم ہو جائیں گے بھائی۔ تو معلوم ہوا ملک صحیح کے اندر اوصاف کے مقابلے میں سمن اور مال نہیں ہوتا، اور ملک فاسد کے اندر اوصاف کے مقابلے میں سمن اور مال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مشتری جو اس غلام کو کفار سے خرید کر لایا تھا اس کی ملکیت صحیح ہے، اس کی ملکیت صحیح ہے، جب اس کی ملکیت صحیح ہے تو اوصاف میں اگر کمی بھی آ گئی ہے، غلام کی ایک آنکھ کسی نے پھوڑ دی ہے، تو اس کے مقابلے میں سمن نہیں ہوں گے، لہذا وہ پرانا مالک اگر اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اس کو پورے سمن کی ادائیگی کر کے ہی اس غلام کو لینا پڑے گا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا कि कुफार ने दारुल इस्लाम पर हमला किया और किसी शख्स के गुलाम को पकड़कर ले गए। एक ताजिर गया और इसने उस गुलाम को 1000 दिरहम में खरीद लिया। तो यह है मुश्तरी अव्वल। फिर यह गुलाम मुश्तरी अव्वल के पास था कि कुफार ने दोबारा हमला किया और दोबारा इस गुलाम को छीन कर ले गए। अब एक और शख्स गया और वो उसी गुलाम को खरीद कर ले आया। तो यह है मुश्तरी सानी। तो क्या वो पुराना मालिक इस मुश्तरी सानी से इस गुलाम को जबरदस्ती ले सकता है 1000 दिरहम के बदले में? कहते हैं नहीं, पुराना मालिक इसे नहीं ले सकता। वजह यह है कि इस मर्तबा कुफार ने जो गुलाम को छीना था वो इस पुराने मालिक से नहीं छीना था बल्कि मुश्तरी अव्वल से छीना था। लिहाजा मुश्तरी अव्वल जो है वो मुश्तरी सानी को 1000 दिरहम देकर यह गुलाम जबरन उससे ले सकता है। और फिर जब यह मुश्तरी अव्वल ले लेगा उसके बाद अगर मालिक इस गुलाम को लेना चाहता है तो मुश्तरी अव्वल को अब वो दो समन अदा करेगा, क्योंकि मुश्तरी अव्वल ने दो समन अदा किए हैं इस गुलाम के। एक मर्तबा उसने पैसे अदा किए थे कुफार को और दूसरी मर्तबा इसने समन अदा किए हैं मुश्तरी सानी को। तो अगर पुराना मालिक इस गुलाम को मुश्तरी अव्वल से लेना चाहता है तो उसको भी ये दोनों समन यानी 2000 दिरहम देने पड़ेंगे भाई। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर मुश्तरी अव्वल मौजूद ना हो, वो गायब है, मालूम नहीं कहां गया हुआ है, फिर भी पुराना मालिक इस गुलाम को मुश्तरी सानी से जबरन नहीं ले सकता। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर दारुल हर्ब वालों ने हमारे मुल्क पर हमला किया और वो हमारे आजाद लोगों को पकड़कर ले गए या हमारे मुदब्बर मुकातब और उम्महाते औलाद को पकड़कर ले गए, फिर वो इसके मालिक नहीं बनेंगे। वजह यह है कि आजाद आदमी जो है वो तो मासूम भी नफसी ही है, वो अपनी जात के एतबार से ही महफूज है, और ये मुदब्बर और उम्महाते औलाद आजादी इनका हक बन चुकी है, तो ये भी बाज एतबार से गोया आजाद ही हैं। और मुकातब, मुकातब तो वैसे ही आजाद आदमी के दर्जे में होता है, जात के एतबार से अगरचे वो गुलाम है लेकिन कब्जे के एतबार से वो आजाद आदमी की तरह होता है, हत्ता के मालिक उससे जबरन अपनी खिदमत में नहीं ले सकता। तो मालूम हुआ मुदब्बर उम्महाते औलाद और मुकातब जब आजाद आदमी के दर्जे में है तो ये भी मासूम भी नफसी ही हैं। जब ये मासूम भी नफसी ही है तो इन पर अगर कुफार गलबा भी हासिल कर लें तो वो मालिक नहीं बनेंगे, क्योंकि इस्तीला के जरिए मिल्कियत उस चीज में आती है जो इस्तीला का महल भी हो, और इस्तीला का महल तो माल मुबाह है, और ये जो अफराद जिक्र हुए ये तो माल मुबाह नहीं है, ये तो मासूम भी नफसी ही है, अपनी जात के एतबार से ही मासूम और महफूज हैं भाई। लिहाजा कुफार इनके मालिक नहीं बनेंगे। हां अगर मुसलमानों ने कुफार के आजाद लोगों को पकड़ लिया या उनके मुदब्बर या उम्महाते औलाद या उनके मुकातबों को पकड़ लिया तो मुसलमान उनके मालिक बन जाएंगे, और दरअसल ये उनके जुर्म की सजा है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, ये कुफर पर जमे हुए हैं, तो इस जुर्म की वजह से अल्लाह ने इनको अपने गुलामों का गुलाम बना दिया। इन्होंने अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा बनने से इनकार किया तो अल्लाह ने इनको अपने गुलामों का गुलाम यानी अपने बंदों का बंदा बना दिया। तो लिहाजा इनको हम पकड़ेंगे तो हम इनके मालिक बन जाएंगे, लेकिन हमारे आजाद लोग जो हैं ये हमारे मुदब्बर मुकातब और उम्महाते औलाद जो हैं उनमें तो कोई कुफर वाला जुर्म या जिनायत नहीं है, लिहाजा वो इनके मालिक नहीं बनेंगे भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाग कर दारुल हर्ब चला जाए तो इमाम साहब के नजदीक कुफार उसके मालिक नहीं बनेंगे, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि कुफार उसके मालिक बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये गुलाम जो था ये माले मासूम था आका के हक की वजह से, क्योंकि आका के कब्जे में था, लेकिन जब ये दारुल हर्ब चला गया तो ये माल आका का कब्जा खत्म, जब आका का कब्जा खत्म तो ये माले मासूम ना रहा, यह माले मुबाह बन गया, और माले मुबाह जब उन कुफार के कब्जे में आ गया है उस पर उनका गलबा हो गया है तो उसके मालिक बन जाते हैं। जबकि इमाम फरमाते हैं नहीं, ये जैसे ही दारुल इस्लाम से निकलेगा तो इसका अपनी जात पर कब्जा आ जाएगा। दारुल इस्लाम के अंदर इसका अपनी जात पर कब्जा जाहिर नहीं हो रहा था, वजह यह कि यहां वो मालिक के कब्जे में था और मालिक इसे तभी फायदा उठा सकता है जब इसका अपनी जात पर कब्जा ना हो। तो दारुल इस्लाम में गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा था वो जाहिर नहीं हो रहा था आका के कब्जे की वजह से। तो जब यह दारुल हर्ब चला गया तो आका का कब्जा खत्म, और जब आका کا قبضہ ختم ہوا تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا، جب اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا تو وہ محفوظ بنفسی ہی بن گیا، اور جب وہ محفوظ بنفسی ہی ہے، وہ مال مباح نہیں ہے، تو کفار اس کو پکڑ بھی لیں پھر بھی وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ لہذا اگر اس غلام کو جس صورت میں بھی واپس لایا جائے، چاہے کوئی خرید کر لائے، چاہے کسی کو تحفہ ملے، چاہے مال غنیمت میں آئے، اور چاہے تقسیم سے پہلے ہو یا چاہے تقسیم کے بعد ہو، ہر صورت میں وہ پرانا مالک اس کو لے لے گا، کیونکہ ابھی بھی وہی اس کا مالک ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ تقسیم سے پہلے لے گا تو پھر یہ غلام وہ مفت لے لے گا، لیکن اگر تقسیم کے بعد یہ غلام لیتا ہے، اب تو یہ غلام کسی غازی کے حصے میں آیا ہے، تو اس غازی کو عوض دینا پڑے گا، لیکن یہ عوض مالک نہیں دے گا، کیونکہ مالک تو اپنا ہی غلام واپس لے رہا ہے، وہ کوئی اس سے نئی چیز نہیں لے رہا، کیونکہ وہ پرانا آقا ہی اس غلام کا ابھی بھی مالک ہے۔ البتہ غازی کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو عوض دیا جائے گا، تو لہذا یہ عوض اب بیت المال سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ بیت المال کا مال جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے نفع کے لیے ہے، تو اس کے ذریعے ادائیگی کر دی جائے گی اس غازی کو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ہمارا کوئی جانور بدک کر دار الحرب چلا جائے اور کفار اس کو پکڑ لیں، تو کفار اس کے مالک بن جائیں گے۔ اور کوئی آدمی اس جانور کو خرید کر لے آتا ہے اور اس جانور کا پرانا مالک جو ہے وہ اس حیوان کو واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کو یہ حیوان لینے کے لیے سمن ادا کرنے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے آج کے سبق پر۔ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَعْتِقُ۔ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک حربی امان لے کر ہمارے دار الاسلام کے اندر آیا، یعنی مستامن بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مستامن بن گیا۔ اور پھر اس نے یہاں ایک مسلمان غلام کو خرید لیا، اور اس مسلمان غلام کو لے کر وہ دار الحرب چلا گیا۔ تو یاد رکھو، امام صاحب فرماتے ہیں اس کے دار الحرب میں داخل ہوتے ہی یہ غلام آزاد ہو جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، یہ غلام اب بھی اسی حربی کا مملوک رہے گا۔ بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ، اور جب کوئی حربی ہمارے دار میں داخل ہوا امان لے کر، یعنی دار الاسلام میں داخل ہوا امان لے کر، وَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا، اور اس نے کوئی مسلمان غلام خریدا، وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ، اور اس کو اس نے دار الحرب میں داخل کر دیا، عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، وَقَالَ لَا يَعْتِقُ، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، لِأَنَّ الْإِزَالَةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بِطَرِيقٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْبَيْعُ۔ حربی دار الاسلام آیا امان لے کر، اور اس نے کسی مسلمان غلام کو خرید لیا، تو یہ اس مسلمان غلام کا مالک بن گیا، لیکن یاد رکھو اب لازم ہے کہ اس حربی کی ملکیت اس مسلمان غلام پر سے ختم کی جائے۔ اب لازم ہے کہ یہ جو حربی کی مسلمان غلام پر ملکیت آئی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ مسلمان کے لیے یہ ذلت اور بے عزتی کی بات ہے کہ وہ کسی حربی کے ماتحت رہے۔ بھائی لہذا اس غلام کو آزاد کروایا جائے گا، چنانچہ قاضی جو ہے وہ اس حربی سے کہے گا کہ اس غلام کو بیچ دو۔ اگر وہ حربی خود غلام کو بیچ دے تو اچھی بات ہے، اگر وہ خود نہیں بیچتا تو قاضی اس غلام کو بیچ دے گا، اور بیچ کر جو سمن ملیں گے وہ حربی کو دے دے گا۔ یعنی اس غلام کو اس حربی کی ملکیت سے نکالنا لازم ہو گیا، تاکہ مسلمان کو کافر کے ماتحت ہونے کی ذلت سے نجات دلائی جائے۔ بھائی تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حربی آیا، اس نے مسلمان غلام کو خریدا، یہ اس کا مالک بن گیا، اور اب لازم ہوا کہ اس مسلمان غلام کو اس کی ملکیت سے نکالا جائے، لیکن اس مسلمان غلام کو اس کی ملکیت سے نکالنے سے پہلے ہی یہ اس کو لے کر دار الحرب چلا گیا۔ जब दारुल हर्ब चला गया तो अब वहां पर तो काजी जबरन कोई फैसला उस पर नाफिज नहीं कर सकता, लिहाजा यह अब भी उसी के कब्जे में गुलाम बनकर रहेगा। काजी इस गुलाम को उसकी मिल्कियत से नहीं निकाल सका तो यह गुलाम अब भी उसी हर्बी की मिल्कियत में रहेगा भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, यह गुलाम दारुल हर्ब में दाखिल होते ही आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वकाला लायातिकु, और साहिबैन फरमाते हैं यह गुलाम आजाद नहीं होगा। लिअन्नल इजालत कानत मुस्तहक्कतन बितरीकिन मुअय्यनिन वहुवल बैउ। लिअन्नल इजालत, अजाला युजीलु इजालतन का माना है खत्म करना, मुराद है उस हरबी के कब्जे को खत्म करना। कहते हैं लिअन्नल इजालत कानत मुस्तहक्कतन, इसलिए क्योंकि उस हरबी के कब्जे को खत्म करने का इस्तेहकाक हो चुका था। बितरीक़ मुअय्यनिन, एक मुअय्यन तरीके के जरिए। वहुवल बैउ, और वो बैउ है। साहिबैन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि हरबी ने जब इस मुसलमान गुलाम को खरीद लिया है दारुल इस्लाम के अंदर, तो अब जरूरी है कि इस हरबी के कब्जे को खत्म किया जाए एक मुअय्यन तरीके से, और वो तरीका बैअ है कि काजी इसको कहेगा इस गुलाम को बेच दो, अगर वो नहीं बेचता तो काजी खुद इस गुलाम को बेच देगा। तो कहते हैं लिअन्नल इजालता, इसलिए क्योंकि इस हरबी के कब्जे को खत्म करना कानत मुस्तहक्कतन, उसका इस्तेहकाक हो चुका था। भी तरीके मुअय्यनिन, एक मुअय्यन तरीके के जरिए। वहुवल बैउ, और वो बैउ है। वकदिन कताअत विलायतुल जबरी अलैही, और तहकीक इस हरबी के ऊपर जो है जबर की विलायत तो मुनकते हो गई, काजी को अब इस पर जबर की विलायत न रही। कहते हैं वकदिन कताअत विलायतुल जबरी अलैही, और इस हरबी पर जबर की विलायत तो मुनकते हो गई, खत्म हो गई। बकिया फी यदिही अब्दन, तो लिहाजा यह मुसलमान जो है उसी के कब्जे में गुलाम होकर बाकी रहेगा। वली अबी हनीफत रहिमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न तखलीस अल मुस्लिमी अन जुल्लिल काफिरी वाजिबुन। तखलीस भाई स्वाद के साथ है, इसका माना है छुड़ाना। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अन्न तखलीस अल मुस्लिमी, के मुसलमान को छुड़ाना अन जुल्लिल काफिरी, काफिर की जिल्लत से, काफिर की बेइज्जती से। वाजिबुन, ये वाजिब है। मुसलमान किसी काफिर के तहत रहे ये मुसलमान के लिए जिल्लत और बेइज्जती की बात है, और इस जिल्लत और बेइज्जती से मुसलमान को छुटकारा दिलाना वाजिब है। तो इमाम साहब फरमाते हैं अन्न तखलीस अल मुस्लिमी अन जुल्लिल काफिरी वाजिबुन, मुसलमान को काफिर की जिल्लत से छुटकारा दिलाना वाजिब है। फयुकामु शर्तु वहुव तबायुनु दारी मकाम अल इल्लति वहुव अल इताकु तखलीसन लहू। तो लिहाजा शर्त को इल्लत के कायम मकाम किया जाएगा इसको छुटकारा दिलाने के लिए। भाई याद रखो, इमाम साहब फरमाते हैं कि हरबी दारुल इस्लाम में आया है और इसने एक मुसलमान को खरीद लिया है और ये उसका मालिक बन गया है, और मुसलमान को काफिर की मातहती की जिल्लत से निजात दिलाना वाजिब है भाई। तो लिहाजा चूंकि ये अमान लेकर ये हरबी यहां आया है, ये मुस्तामिन है, और मुस्तामिन का माल जो है वो मोहतरम होता है, वो क्योंकि हमने उसको अमान दी है भाई। तो लिहाजा इससे ये गुलाम वैसे तो नहीं छीना जा सकता क्योंकि ये उसका माल मोहतरम है। हां अलबत्ता इसको यहां इसका इवज दे दिया जाएगा, यानी बैग के जरिए यह गुलाम इससे छुड़वा लिया जाएगा। लेकिन यह तो इस गुलाम को लेकर दारुल हर्ब चला गया। जब दारुल हर्ब चला गया तो उस माल की इस्मत खत्म हो गई भाई, क्योंकि जब तक यह मुस्तामिन था इसका माल महफूज और मासूम था, लेकिन जब यह इस माल को लेकर दारुल हर्ब में दाखिल हुआ तो अमान खत्म। जब अमान खत्म तो हरबी का माल अब मासूम और महफूज न रहा। जब मासूम और महफूज न रहा तो अब इस माल को छुड़ाने में इवज नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब इमाम पर लाजिम है कि उस गुलाम को बगैर इवज के ही आजाद करवाकर इस काफिर की मातहती से उसको निजात दिलाए। लेकिन यह तो दारुल हर्ब है, यहां तो इमाम का या काजी का हुक्म नहीं चलता, यहां तो उनको विलायत हासिल नहीं है। तो लिहाजा यहां हुक्म की निस्बत इल्लत के बजाय शर्त की तरफ कर दी जाएगी, भाई इस गुलाम को इस हरबी की मिल्कियत से निकाला जाएगा। किस तरीके से? उसकी मिल्कियत खत्म की जाएगी, यानी एताक के जरिए। तो एताक इल्लत है उस गुलाम को उसकी मिल्कियत से निकालने का। इताक इल्लत है उस हरबी की मिल्कियत को खत्म करने की, उसकी वजह से गुलाम आजाद हो जाएगा। लेकिन इताक तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां काजी या इमाम को विलायत हासिल नहीं है। तो जब इल्लत की तरफ इस हुक्म की निस्बत नहीं हो सकती, यानी इस काफिर की मिल्कियत इताक के जरिए जब खत्म नहीं की जा सकती, तो फिर शर्त की तरफ इस हुक्म की निस्बत कर दी जाएगी। और वो और शर्त जो है वो तबायुनेदार है। वो क्या है? तबायुनेदार। आप जानते हैं तबायुनेदार की वजह से मिल्कियत खत्म हो जाया करती है। जैसे मुसलमान माले गनीमत लेकर आते हैं, तो जब उसको वो दारुल इस्लाम में ले आएंगे तो अब उन हरबियों की मिल्कियत इस माल पर से खत्म हो गए और मुसलमान इसके मालिक बन गए। और इसी तरह हरबी जो है जब हमारा माल छीन कर अपने दार में ले जाते हैं तो मुसलमानों की मिल्कियत खत्म हो जाती है और हरबी उसके मालिक बन जाते हैं। मालूम हुआ तबायुनेदार जो है यानी दार का मुख्तलिफ होना यह शर्त है मिल्कियत के खत्म करने के लिए। दार मुख्तलिफ होगा तो माल पर से उस पुराने मालिक की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई। मालूम हुआ तबायुनेदार शर्त है मिल्कियत खत्म करने के लिए। और यहां पर हर भी एक मुसलमान गुलाम को अपने दार में ले गया है, तो यहां असल तो यह था कि काजी उस गुलाम को आजाद करवाए, उसका इताक करे, और इताक की वजह से उस हरबी की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां जवाले मिल्क की निस्बत इताक की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि इताक पर हम कादिर नहीं हैं। तो जब हुक्म की निस्बत, हुक्म क्या है? उस हरबी की मिल्कियत खत्म करनी है, तो लिहाजा जब इस हरबी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत इताक की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि इताक पर हम कादिर नहीं, तो फिर इस हुक्म की निस्बत जो है शर्त की तरफ की जाएगी। और शर्त क्या है? तबायुनेदार। तबायुनेदार की वजह से मिल्कियत खत्म हो जाया करती है, लिहाजा हम यहां भी कहेंगे कि तबायुनेदार की वजह से हरबी की मिल्कियत खत्म हो गई और गुलाम आजाद हो गया। सूरत समझ में आ गई? फिर सुन लीजिए भाई, मुश्किल मसला है। सूरत यह है, एक हरबी दारुल इस्लाम में आया और उसने एक मुसलमान गुलाम को खरीद लिया और फिर इस मुसलमान गुलाम को लेकर वो दारुल हर्ब चला गया। तो साहिबैन फरमाते हैं कि यह गुलाम अब भी उसी का ममलूक है, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, यह गुलाम आजाद हो चुका है। साहिबैन फरमाते हैं कि हरबी ने जब यहां गुलाम को खरीदा था तो उस गुलाम को छुड़ाने का एक ही मुतायन तरीका था कि उस गुलाम को बेचा जाए और उसका इवज उस हरबी को दिलाया जाए। लेकिन हरबी जो है इस गुलाम को जब दारुल हर्ब में ले गया है तो अब काजी की वहां विलायत ही नहीं है, वो अब इस गुलाम को बेचने पर अब कादिर ही नहीं है, लिहाजा वो गुलाम अभी भी उसी हरबी का ममलूक है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, इस मुसलमान गुलाम को काफिर की जिल्लत से बचाना और निकालना जरूरी है भाई। और यहां पर जब इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत नहीं की जा सकती तो शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की जाएगी, और वह कि तबायुनेदार की वजह से इस गुलाम पर से उस हरबी की मिल्कियत खत्म हो जाएगी और गुलाम आजाद हो जाएगा भाई। गुलाम आजाद हो जाएगा। मैंने आपको बतलाया था कि हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ की जाती है, लेकिन इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत ना हो सके तो हुक्म की निस्बत सबब की तरफ की जाती है, और अगर सबब की तरफ भी हुक्म की निस्बत ना हो सके तो फिर हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है। जैसे इसकी मिसाल पीछे भी गुजरी थी कि रास्ते में एक आदमी ने कुआं खोदा और उसके अंदर कोई शख्स गिर कर मर गया, तो फिर इस सूरत में इस कत्ल की निस्बत इस शर्त की तरफ यानी कुआं खोदने वाले की तरफ की जाएगी कि अगर यह कुआं न खोदता तो ये कुएं में ये शख्स भी गिरकर ना मरता भाई। हालांकि मरने की असल इल्लत जो है वो तो उस शख्स का वजनी होना है, ये वजनी ना होता तो कुएं के अंदर भी न गिरता और गिरकर न मरता भाई। लेकिन यहां पर इस मरने की निस्बत जो है इल्लत यानी वजनी होने की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि अल्लाह ने चीजों को पैदा ही इस तरह किया है, कुछ चीजों का वजन है और कुछ चीजों का वजन नहीं है भाई। तो जब इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत ना हो सके तो फिर सबब की तरफ की जाती है, और सबब जो है यहां वो उस आदमी का रास्ते पर चलना है। अगर वो इस रास्ते पर न चलता तो कुएं में न गिरता और न मरता, लेकिन रास्ते पर चलना तो सबके लिए मुबाह है, लिहाजा उस रास्ते पर चलने की तरफ भी इस कत्ल की निस्बत नहीं की जा सकती, तो फिर इस कत्ल की निस्बत शर्त की तरफ की जाएगी। शर्त है तो मशरूत है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। इस आदमी ने कुआं खोदा है तो यह इसमें दूसरा गिरा और मरा, अगर यह कुआं ना खोदता तो यह उसमें गिर कर ना मरता भाई। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा उस शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की जाएगी और वह जो आदमी है जो कुआं खोदने वाला है उसको दियत अदा करना पड़ेगी। तो यहां पर भी इसी तरह है, हर्बी दारुल इस्लाम के अंदर आया है और इसने एक मुसलमान गुलाम को खरीदा है और ये इस गुलाम का मालिक बन गया और ये अमान लेकर यहां आया है तो ये मुस्तामिन है और मुस्तामिन की जान भी महफूज है और माल भी यहां पर महफूज है, लिहाजा ये गुलाम हम इससे मुफ्त में तो नहीं छुड़ा सकते, अलबत्ता फिर इसको हम इसका इवज देंगे क्योंकि ये माल मुहतरम है भाई, इवज देंगे और यानी बै के जरिए इससे इस गुलाम को छुड़वाएंगे। लेकिन ये उस गुलाम को लेकर दारुल हर्ब चला गया, जब दारुल हर्ब चला गया तो अब इसके माल की इस्मत बाकी ना रही, जब ये माल मासूम नहीं है तो अब इवज देकर नहीं छुड़ाएंगे, वैसे ही मिल्कियत को खत्म किया जाएगा और वो ये कि काजी इस गुलाम का एताक करवाएगा, इसको आजाद करवाएगा, तवज्जो है, और उस एताक की वजह से इस हर्बी की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। तो यहां पर हुक्म क्या है, उस हर्बी की मिल्कियत खत्म करना, और इल्लत क्या है, इताक कि इस गुलाम को आजाद करवाया जाए, तवज्जो है। लेकिन इस मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत इताक की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि वो शख्स दारुल हर्ब में है और वहां पर काजी या इमाम को विलायत ही हासिल नहीं है कि वो इसका इताक करवाए। तो इस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत जब इल्लत यानी इताक की तरफ नहीं की जा सकती तो फिर इसकी निस्बत शर्त की तरफ की जाएगी, और आप जानते हैं कि तबायुनेदार शर्त है मिल्कियत के खत्म होने के लिए, मुसलमानों का माल कुफार छीनकर दारुल हर्ब में ले जाएं तो मुसलमान की मिल्कियत खत्म हो जाती है, या मुसलमान हर्बियों का माल छीन कर दारुल इस्लाम में ले आए तो हर्बियों की मिल्कियत खत्म हो जाती है। मालूम हुआ दार का मुख्तलिफ होना यह शर्त है मिल्कियत के खत्म करने के लिए। तो लिहाजा जब इस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने की निस्बत इताक की तरफ नहीं हो सकती तो मिल्कियत खत्म करने के लिए जो शर्त है यानी तबायुनेदार उसकी तरफ निस्बत की जाएगी, लिहाजा तबायुनेदार की वजह से ही गुलाम आजाद हो जाएगा। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्न तखलीस अल मुस्लिमी अन जुल्लिल काफिरी वाजिबुन, कि मुसलमान को काफिर की जिल्लत से निजात दिलाना वाजिब है। फयुकामु शर्तु, तो शर्त को कायम किया जाएगा। वह हुआ तबायुनुद्दारैनी, और वो दोनों दारों का मुख्तलिफ होना है। शर्त क्या है, तबायुनेदारैन भाई। तो कहते हैं फयुकामु शर्तु व हुवा तबायुनुद्दारैनी, और वो दोनों दारों का मुख्तलिफ होना है। तो इस शर्त को कायम किया जाएगा मकामल इल्लति, इल्लत के, और इल्लत क्या है, वह हुवल इताकु, वो इस गुलाम का इताक है कि काजी इसका इताक करे। तो शर्त को इल्लत के कायम मकाम किया जाएगा तखलीसन लहू, इस गुलाम को छुड़ाने के लिए। तवज्जो है भाई। देखिए यह जुमला जो है जरा तवील हो गया, तर्जमा मुश्किल हो गया। यहां दरमियान में जिक्र किया कि शर्त क्या है, वह हुआ तबायुनुद्दारैनी, शर्त का लफ्ज आया तो साथ ही साहिब हिदाय ने बतला दिया शर्त क्या है, दोनों दारों का मुख्तलिफ होना, और फिर इल्लत का जिक्र आया तो साथ ही साहिब हिदाय ने बतला दिया वह हुवल इताक, उस हर्बी की मिल्कियत खत्म करने की इल्लत क्या है, इताक है कि काजी उस गुलाम को आजाद करवाए। भाई बात समझ में आ गई। तो ये जो शर्त बयान की वह हुआ तबायुनुद्दारैन, और ये जो इल्लत बयान की वह हुआ इताकु, इन दो को जरा निकाल दें और फिर जुमला देखें, फिर तर्जमा आपको बेहतरीन समझ में आएगा। कहते हैं फयुकामु शर्तु मकाम अल इल्लती तखलीसन लहू, तो शर्त को इल्लत के कायम मकाम कर दिया जाएगा तखलीसन लहू, मुसलमान को निजात दिलाने के लिए। जी आगे देखिए कमा युकामु मुजियु सलासिहियजिन मकामत तफरीक। साहिब हिदाय मिसाल जिक्र कर रहे हैं कि कभी कभार शर्त को इल्लत के कायम मकाम कर दिया जाता है, हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ ही कर दी जाती है। मैंने एक मिसाल जिक्र कर दी, वो कुएं के अंदर कोई शख्स गिर कर मर जाए, तवज्जो है। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है। मसलन आप जानते हैं भाई कि दारुल इस्लाम के अंदर अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो काजी जो है दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा, और अगर वो दूसरा इस्लाम कबूल कर लेता है तो ये इसी तरह मियां बीवी रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो ये इस्लाम से जो इनकार है ये दोनों के दरमियान जुदाई का सबब बनेगा, और फिर काजी इनमें तफरीक करवा देगा तो इनमें बैनूनत आ जाएगी यानी जुदाई। तो मालूम हुआ दारुल इस्लाम के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो वहां बैनूनत यानी जुदाई की जो इल्लत है वो काजी की तफरीक है कि काजी इनमें जुदाई करवा देता है। काजी जुदाई करवाता है तो जुदाई आ जाती है। तो मालूम हुआ काजी की तफरीक ये इल्लत है और मियां बीवी के दरमियान जुदाई यानी बैनूनत वो इसका हुक्म है भाई। मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं उनमें बैनूनत आ जाती है। तवज्जो है। तो हासिल कलाम ये कि दारुल इस्लाम में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो बैनूनत की इल्लत जो है वो काजी की तफरीक है। लेकिन अगर यही मसला दारुल हर्ब में पेश आया कि मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया, अब इनके दरमियान जुदाई चाहिए भाई, मियां बीवी में से एक मुसलमान हो गया है तो इनमें जुदाई चाहिए, बैनूनत चाहिए, लेकिन इस बैनूनत की निस्बत काजी की तफरीक की तरफ नहीं की जा सकती क्योंकि काजी को तो इस बात की विलायत नहीं है कि वो दारुल हर्ब में दूसरे पर इस्लाम को पेश करे और फिर उसके इनकार की वजह से दोनों में तफरीक कर दे। तो मालूम हुआ दारुल हर्ब में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो वहां बैनूनत की निस्बत काजी की तफरीक यानी इल्लत की तरफ नहीं की जा सकती। तो जब हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ न की जा सके तो फिर हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ कर दी जाती है और आप जानते हैं कि बैनूनत के लिए तीन हैज शर्त हैं। कोई खावन अपनी बीवी को तलाके रजई दे दे तो औरत जो है तीन हैज गुजारने के बाद खावन से बाइना हो जाएगी, जुदा हो जाएगी और वो जहां चाहे निकाह कर सकती है। मालूम हुआ तीन हैज गुजारना ये शर्त है बैनूनत के लिए। तो जब दारुल हर्ब के अंदर बैनूनत की निस्बत इल्लत यानी काजी की तफरीक की तरफ नहीं की जा सकती तो फिर इस बैनूनत की निस्बत शर्त यानी तीन हैजों की तरफ कर दी जाएगी। इन तीन हैजों को ही इल्लत यानी काजी की तफरीक के कायम मकाम कर दिया जाएगा। तो वहां पर वो औरत जब तीन हैज गुजार लेगी तो खावंद और बीवी में जुदाई आ जाएगी। तो हुक्म की निस्बत जब इल्लत की तरफ न की जा सके तो हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है। जैसे दारुल हर्ब के अंदर बैनूनत की निस्बत काजी की तफरीक की तरफ नहीं हो सकती तो फिर उसकी निस्बत शर्त यानी तीन हैजों की तरफ कर दी जाएगी और तीन हैज गुजारने पर वो बीवी खावन से जुदा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं कमा यु कामु मुजी सलासिन मकाम तफरी, जैसे कि तीन हैजों का गुजरना इसको कायम मकाम किया जाएगा तफरीक के यानी काजी की तफरीक के, काजी उनमें जुदाई करवाता है। तो कहते हैं कमा युकामु मुजीयु सलासिहियजिन मकामत तफरीकी, जैसे कि तीन हैजों का गुजरना इसको काजी की तफरीक के कायम मकाम कर दिया जाएगा। फीमा इदा असलम अहदुज़्ज़ौजैनि फी दारिल हर्बी, उस सूरत में जबकि मियां बीवी में से कोई एक दारुल हर्ब में मुसलमान हो जाए। बात समझ में आ गई। यहां पर एक एतराज होता है। एतराज यह होता है कि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह मुस्तामिन जो दारुल इस्लाम से मुसलमान गुलाम को खरीद कर ले गया, जैसे ही यह दारुल हर्ब में दाखिल होगा इस मुसलमान गुलाम को लेकर तो यह मुसलमान गुलाम आजाद हो जाएगा। तो इस पर इश्काल होता है कि अपने दार के अंदर किसी चीज को लाना यह तो मिल्कियत का सबब होता है। जैसे आपने पढ़ा पीछे कि मुसलमान जब माले गनीमत को अपने दार में यानी दारुल इस्लाम में लाएंगे तो मुसलमान मालिक बन जाएंगे। हर्बियों की मिल्कियत तो खत्म हुई लेकिन मुसलमानों की मिल्कियत तो साबित हो गई। इसी तरह हर्बी जो हैं जब हमारा माल लूट कर अपने मुल्क लेकर जाएंगे तो मुसलमानों की मिल्कियत तो खत्म हुई लेकिन हर्बी तो उसके मालिक बन गए। मालूम हुआ किसी माल को अपने दार के अंदर लाना यह तो मालिक होने का सबब है, लिहाजा आप इसको जवाल मिल्कियत का सबब करार नहीं दे सकते। आपने क्या कहा कि हर्बी इस मुसलमान गुलाम को जैसे ही अपने दार में लेकर जाएगा तो यह मुसलमान गुलाम आजाद हो जाएगा। हालांकि अपने दार के अंदर माल को लाना यह तो मालिक होने का सबब है और आप इसको जवाल मिल्कियत का सबब करार दे रहे हैं। भाई बात समझ में आ गई, तो उलमा उसका जवाब देते हैं कि यहां दोनों सूरतों में फर्क है। एक सूरत यह है कि हर्बी दारुल इस्लाम पर हमला आवर होते हैं और किसी मुसलमान गुलाम को पकड़कर दारुल हर्ब ले जाते हैं तो वह मालिक बन जाएंगे, और एक सूरत यह है कि कोई हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम आता है और वह किसी मुसलमान गुलाम को खरीदता है तो जैसे ही वो इस मुसलमान गुलाम को लेकर दारुल हर्ब में दाखिल होगा तो यह मुसलमान गुलाम आजाद हो जाएगा। वजह यह कि जब हर्बी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया और इसने एक मुसलमान गुलाम को खरीदा तो यह मुसलमान गुलाम मुस्तहिक बन गया इस बात का कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत को खत्म किया जाए। हर्बी दारुल इस्लाम आया है, उसने गुलाम खरीदा तो यहीं पर वो हर्बी इस गुलाम का मालिक बन गया, वो हर्बी जो मुस्तामिन है वो इस मुसलमान गुलाम का मालिक बन गया, तो ये मुसलमान गुलाम ये मुस्तहिक हो गया इस बात का कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत को खत्म किया जाए ताकि मुसलमान को काफिर के मातहत होने की जिल्लत से निजात दिलाई जाए भाई। और जब हम हर्बी की मिल्कियत को इस पर से खत्म न कर सके और इसी तरह हर्बी इसको दारुल हर्ब ले गया तो वहां खुद ब खुद उसकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी तबायुन दार की वजह से। जबकि इसके मुकाबले में जब हर्बी दारुल इस्लाम पर हमला आवर होते हैं और यहां पर वो किसी मुसलमान गुलाम को कैद कर लेते हैं तो जब तक ये दारुल इस्लाम में है ये इस मुसलमान गुलाम के मालिक ही नहीं बने, जब ये उसके मालिक नहीं बने तो अभी भी गुलाम इस बात का मुस्तहिक नहीं हुआ कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत खत्म की जाए
जी।
अभी भी गुलाम इस बात का मुस्तहिक नहीं हुआ कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत खत्म की जाए, क्योंकि हर्बी की मिल्कियत है ही नहीं तो उसको खत्म करने का क्या माना। मिल्कियत तो तब खत्म करेंगे जब पहले मिल्कियत साबित तो हो जाए। तो जब हर्बियों ने एक मुसलमान गुलाम को दारुल इस्लाम में पकड़ लिया तो यह मुसलमान गुलाम अभी तक इस हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने का मुस्तहिक नहीं हुआ भाई। तो मालूम हुआ यह उस गुलाम से मुख्तलिफ है। वो जो हर्बी मुस्तामिन ने खरीदा था वो हर्बी की मिल्कियत के खत्म करने का मुस्तहिक हो चुका था, और यह गुलाम जिसको हर्बियों ने कैद कर लिया है यह गुलाम हर्बियों की मिल्कियत के खत्म करने का अभी भी मुस्तहिक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हर्बी इसके मालिक ही नहीं बने। वो मालिक ही तब बनेंगे जब इसको अपने दार में ले जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ दोनों सूरतों में फर्क है। वो और सूरत है कि हर्बी मुसलमान गुलाम को पकड़कर दारुल हर्ब ले जाएंगे तो वो फिर मालिक बनेंगे, और ये और सूरत है कि हर्बी ये मुस्तामिन यहां से मुसलमान गुलाम को खरीद कर लेकर जाएगा तो जैसे ही दारुल हर्ब में जाएगा वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि यह गुलाम मुस्तहिक हो चुका था कि इस पर से हर्बी की मिल्कियत को खत्म किया जाए। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, व इदा असलम अब्दुन लिहर्बियिन सुम्मा खरज इलैना औ ज़ुहिरा अलद्दारि फहुवा हुर्रुन। सूरत मसला ये भाई, हर्बी का कोई गुलाम मुसलमान हुआ और मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आ गया, याद रखो ये मुसलमान अब आजाद हो गया। ये मुसलमान आजाद हो गया क्योंकि ये मुसलमान होकर दारुल इस्लाम आया है तो इसने अपनी जान को महफूज कर लिया। इसी तरह अगर मुसलमानों ने दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया और उसको भी दारुल इस्लाम में शामिल कर लिया और वहां एक हर्बी का गुलाम था जो मुसलमान था भाई, तो इस सूरत के अंदर भी वो गुलाम आजाद हो जाएगा। हर्बी का एक मुसलमान गुलाम था और मुसलमानों ने दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया तो हर्बी का यह मुसलमान गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वह इदा असलमा अब्दुन लिहर्बियिन, और जब किसी हर्बी का कोई गुलाम मुसलमान हो गया, सुम्मा खरजा इलैना, फिर वो गुलाम हमारी तरफ निकल आया यानी दारुल इस्लाम आ गया, औ ज़ुहिरा अलद्दारी, या गलबा पा लिया गया उस दारुल हर्ब पर, فَهُوَ حُرٌّ تو وہ غلام آزاد ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ جب حربیوں کے غلام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں, یعنی مسلمان ہو کر ان کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں, فَهُمْ أَحْرَارٌ تو وہ آزاد ہیں. مسلمانوں کا لشکر جہاد کے لیے دارالحرب گیا اور ان حربیوں کے کچھ غلام مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے, تو یاد رکھو یہ سب غلام بھی آزاد شمار ہوں گے. تو کہتے ہیں وکذالک اور اسی طرح اذا خرج عبیدهم الى عسكر المسلمین جب حربیوں کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں, فهم احرار تو وہ آزاد ہیں, لما رویا اس حدیث کی وجہ سے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان عبیدا من عبید الطائف اسلموا کہ طائف کے غلاموں میں سے کچھ غلام مسلمان ہوئے. حضور علیہ السلام لشکر لے کر طائف پر حملہ آور ہوئے بھائی, تو طائف والوں کے کچھ غلام مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے, تو حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد قرار دیا بھائی. تو کہتے ہیں لما رویہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان عبیدا من عبید الطائف اسلموا کہ طائف کے غلاموں میں سے کچھ غلام مسلمان ہوئے, وخرجوا الى رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل آئے, فقضا بعتقهم تو حضور علیہ السلام نے ان کی آزادی کا فیصلہ فرمایا, وقال اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم عتقاء اللہ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں, یہ غلام اللہ کے آزاد کردہ ہیں. وَلِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو غلام جو مسلمان ہو کر دارالاسلام آ گیا یا جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے دارالحرب پر قبضہ کر لیا, یا یہ غلام جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے, یہ سب آزاد شمار ہوں گے کیونکہ مسلمان ہو کر انہوں نے اپنی جان محفوظ کر لی. مسلمان ہو کر انہوں نے اپنی جان محفوظ کر لی. تو اب اس کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں ولی انہ احرز نفسہ اس لیے کیونکہ اس غلام نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا, بالخروج الینا ہماری طرف نکلنے کی وجہ سے, مراغما لمولاہ اپنے آقا سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے. راغم یراغم مراغمتن کا معنی ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا, لیکن ہر علیحدگی نہیں بلکہ ایسی علیحدگی جس کے اندر نفرت اور دشمنی ہو. تو صاحب ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں بھائی, اور صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کہ غلام مسلمان ہو کر اپنے آقا کو چھوڑ کر آیا ہے, معلوم ہوا یہ چھوڑنا نفرت اور دشمنی کے ساتھ ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کے لیے مراغمن کا لفظ استعمال فرمایا. تو کہتے ہیں ولی انہ احرز نفسہ بالخروج الینا اور اس لیے کیونکہ اس غلام نے اپنی ذات کو محفوظ کر لیا ہے ہماری طرف نکلنے کی وجہ سے, مراغمن لمولاہ اپنے آقا سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے, او بالالتحاق بمنعت المسلمین اذا ظهر على الدار یا اس وجہ سے اس کی جان محفوظ ہو گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل گیا ہے. التحاق کا معنی ہے مل جانا, اور منع میں نے بتلایا تھا منع کا معنی لشکر کے بھی ہیں اور منع کے معنی قوت کے بھی ہیں. تو یہاں یہ جو آیا بھی منعت المسلمین اس سے مراد لشکر ہے بھائی. کہتے ہیں او بالالتحاق بمنعت المسلمین یا اس مسلمان نے اپنی جان محفوظ کر لی ہے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے, اذا ظہر علی الدار جب ان کفار کے دار پر غلبہ پا لیا گیا. بھائی جب کفار کے دار پر غلبہ پا لیا گیا تو یہ غلام پہلے سے مسلمان تھا, تو یہ مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا. یہ بھی کیا ہوا, مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا. جب یہ مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا تو اس نے اپنی جان محفوظ کر لی. بات سمجھ میں آ گئی. तो कहते हैं औ बिल इल्तिहाक बि मनाअतिल मुस्लिमीना, या इसने अपनी जान महफूज कर ली इस वजह से कि ये मुसलमानों के लश्कर के साथ मिल गया है। इजा जुहिरा अलद्दारी, जब उन कुफार के दार पर गलबा पा लिया गया। वतबारु यदि ही औला मिन एतबार यदिल मुस्लिमीन, साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे भाई कि क्या वजह है कि इस गुलाम को आजाद शुमार किया गया और इसको माले गनीमत शुमार नहीं किया गया, हालांकि मुसलमानों ने दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया है, फिर भी इसको आजाद शुमार किया गया और इसको माले गनीमत शुमार नहीं किया गया। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि एक है इस मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर कब्जा और एक है मुसलमानों का इस पर कब्जा। तो जब मुसलमानों ने दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया तो गुलाम का अपनी जात पर कब्जा आ गया, गुलाम का अपनी जात पर कब्जा आ गया, और गुलाम का कब्जा अपनी जात पर यह मुकद्दम है लश्कर वालों के कब्जे से, मुसलमानों के लश्कर के कब्जे से मुकद्दम है इस गुलाम का अपना कब्जा अपनी जात पर। तवज्जो है, तो मुसलमान गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है वो मुकद्दम है और सिर्फ अब उस कब्जे को पक्का करने की जरूरत है। और अगर मुसलमानों के लश्कर का इस पर कब्जा करार दिया जाए तो वो एक नया कब्जा साबित करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि एक है ताकीद और एक है किसी चीज की इब्तिदा, और ताकीद आसान है इब्तिदा के मुकाबले में। ताकीद में एक चीज जो पहले से मौजूद है उसी को पक्का कर दिया जाता है, और इब्तिदा के अंदर एक नई चीज को साबित किया जाता है। तो गुलाम का जब अपनी जात पर कब्जा मुकद्दम हो गया तो अब सिर्फ इसी कब्जे को पक्का करने की जरूरत है, लेकिन अगर मुसलमानों के लश्कर का इस पर कब्जा साबित करना है तो वो एक नया कब्जा है। तवज्जो है, तो गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है वो मुकद्दम हो चुका है, सिर्फ वहां ताकीद की जरूरत है कि उसी कब्जे को पुख्ता करार दे दिया जाए, और लश्कर का इस पर अगर कब्जा साबित करना है वो तो एक नया कब्जा साबित करना पड़ेगा, और ताकीद को साबित करना आसान है किसी नई चीज के मुकाबले में, क्योंकि ताकीद के अंदर एक चीज पहले से साबित है, सिर्फ उसको पक्का करना है, और इब्तिदा के अंदर तो एक नई चीज को साबित करना पड़ेगा। तो ताकीद आसान है और बेहतर है इब्तिदा के मुकाबले में। तो लिहाजा यहां पर भी गुलाम के अपने कब्जे को ही पक्का करार दे दिया जाएगा और मुसलमानों के लश्कर का इस पर नया कब्जा साबित नहीं होगा। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वातिबारु यदि ही औला मिन एतबारी यदिल मुस्लिमीना, कहते हैं वातिबारु यदि ही, और गुलाम के अपने कब्जे का जो एतबार है औला वो बेहतर है, मिन एतबारी यदिल मुस्लिमीना मुसलमानों के कब्जे के एतबार से। एक सूरत यह है कि गुलाम के अपने कब्जे का एतबार किया जाए और एक सूरत यह है कि मुसलमानों के इस पर कब्जे का एतबार किया जाए। तो गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है उसका एतबार करना बेहतर है मुसलमानों के इस पर कब्जे के एतबार करने के मुकाबले में। तो यह माना है, कहते हैं वातिबारु यदि ही औला मिन एतबार यदिल मुस्लिमीना, और उस गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है उसका एतबार करना बेहतर है मुसलमानों के कब्जे के एतबार करने से। लिअन्नहा असबकु सुबूतन अला नफ्सिही, इसलिए क्योंकि गुलाम का जो कब्जा है असबकु वो मुकद्दम है, सुबूतन अला नफ्सिही अपनी जात पर सुबूत के एतबार से। उस गुलाम का अपनी जात पर जो कब्जा है वो मुकद्दम है किसके कब्जे पर, उस लश्कर वालों के कब्जे से, मुसलमानों के लश्कर के कब्जे से मुकद्दम है इस गुलाम का अपनी जात पर कब्जा। कहते हैं लिअन्नहा असबकु सुबूतन अला नफ्सिही, इसलिए क्योंकि गुलाम का जो कब्जा है वो मुकद्दम है अपनी जात पर साबित होने के एतबार से। फलहाजतु फी हकही इला ज़ियादती तौकीदिन, तो गुलाम के अपने हक में हाजत जो है वो सिर्फ ताकीद की ज्यादती की है, गुलाम के हक में सिर्फ ताकीद की ज्यादती की हाजत है, वही कब्जा जो पहले से साबित है उसी को पक्का कर दिया जाए। जो कहते हैं फल हाजतु फी हक ही इला ज्यादती तौकीदिन, तो गुलाम के हक में जिस चीज की हाजत है वो सिर्फ ताकीद की ज्यादती है। वफी हक हिम इला इस बात इलियद इब्तिदा अन, और मुसलमानों के हक में जिस चीज की हाजत है वो इब्तिदा अन एक नए कब्जे को साबित करना है। फकान औला, लिहाजा गुलाम के कब्जे का एतबार करना औला है, बेहतर है। बात समझ में आ गई। चलिए बस, बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।